एकात्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में।
नमस्कार,
आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं।
हाँ, फ्रैंक क्लोज की किताब है नथिंग, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये किताब पूछती है शून्य क्या है, मतलब व्हाट इज नथिंग।
सुनने में बहुत सीधा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल, और ये आज भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स से लेकर यूनिवर्स के फैलने तक सबको जोड़ता है।
हाँ, ये सिर्फ खालीपन की फिलॉसफी नहीं है, ये असल में हमारे वजूद की कहानी है, वास्तविकता की नींव की बात है।
तो चलिए इस कुछ नहीं के पीछे छुपे सब कुछ को समझने की कोशिश करते हैं।
और इस सफर में हमारे गाइड है फ्रैंक क्लोज। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के एमेरिटस प्रोफेसर हैं।
हाँ, और जाने माने थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, मतलब कण भौतिक विज्ञानी।
जी, उनका खास काम क्वार्क और ग्लूऑन पर रहा है, जो एटम के अंदर की दुनिया है।
और देखिए, क्लोज सिर्फ रिसर्चर ही नहीं है, वो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में भी उस्ताद हैं।
सही कहा, उनकी कई किताबें हैं, जैसे द इन्फिनिटी पजल, मुश्किल आइडियाज को कहानी की तरह बताते हैं।
तो उनमें वो दोनों बातें हैं, गहरी समझ भी और सरल भाषा में समझाने का हुनर भी।
बिल्कुल, और इसीलिए नथिंग जैसे टॉपिक पर लिखने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति हैं। वो सर्न वगैरह से भी जुड़े रहे हैं।
अच्छा, सर्न, जहां वो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं।
हाँ, वही तो, उन्होंने उन खोजों को करीब से देखा है जिनसे शून्य की हमारी समझ बदली है। वो सिर्फ बता नहीं रहे, वो उस कहानी का हिस्सा रहे हैं।
तो किताब का सार क्या है, मतलब मुख्य आइडिया?
ये हमारी उस आम सोच को चैलेंज करती है कि भाई शून्य मतलब बस खाली जगह, कुछ भी नहीं।
हाँ, जहां कुछ मौजूद ना हो।
किताब कहती है कि जिसे हम खाली स्पेस या वैक्यूम समझते हैं, वो असल में खाली है ही नहीं।
अच्छा।
हाँ, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक्टिव और गुणों से भरी हुई चीज है। उसमें क्वांटम उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वर्चुअल कण बनते बिगड़ते रहते हैं, उसमें छिपी हुई ऊर्जा है।
बाप रे।
और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के लिए, हमारे होने के लिए बहुत जरूरी है।
और किताब ये सब फिलॉसफी से नहीं?
नहीं नहीं फिजिक्स से समझाती है, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी के आधार पर।
अच्छा।
ये दिखाती है कि कैसे कुछ नहीं से ही कुछ, मतलब पदार्थ, ऊर्जा, ये सब बन सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के नियम मिलकर इस शून्य को शायद यूनिवर्स का सबसे जरूरी हिस्सा बना देते हैं।
तो चले देखते हैं ये सोच कैसे बदली, शुरुआत कहां से होती है।
किताब शुरू करती है शास्त्रीय शून्य, क्लासिकल वॉइड से, पुराने यूनानी दार्शनिकों से।
हाँ, उनमें बहस चलती थी इस पर।
बिल्कुल, पारमेनाइड्स जैसे लोग थे जो मानते थे कि शून्य हो ही नहीं सकता, अगर सोच लिया तो वो कुछ हो गया।
दिलचस्प।
और डेमोक्रेटस जैसे थे जो कहते थे कि भाई एटम को घूमने फिरने के लिए खाली जगह तो चाहिए ही।
फिर अरस्तु आए, उनका क्या कहना था?
अरस्तु का मानना था कि प्रकृति को शून्य पसंद नहीं, नेचर अबहोर्स अ वैक्यूम, और ये आइडिया सदियों तक चला।
हाँ, सुना है।
लेकिन फिर 17वीं सदी में टॉरिसेली ने वो पारे वाला एक्सपेरिमेंट किया।
हाँ, बैरोमीटर वाला।
कि पहली बार इंसानों ने वैक्यूम बनाया और अरस्तु को चुनौती दी। फिर पास्कल ने और पुख्ता किया। तो उस जमाने में वैक्यूम का मतलब था वो जगह जहां मैटर न हो, पदार्थ रहित स्थान।
ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं, आगे क्या हुआ?
आगे आई 19वीं सदी की पहेली। किताब इसे इथीरियल नथिंग कहती है। मैक्सवेल ने दिखाया कि लाइट एक वेव है।
हाँ, प्रकाश तरंग।
तो वैज्ञानिकों को लगा जैसे आवाज को हवा चाहिए, वैसे लाइट को भी कोई मीडियम चाहिए होगा। नाम रखा ल्यूमिनिफेरस ईथर।
ईथर, हाँ ये सुना है, बड़ा रहस्यमय सा लगता था।
और था भी, उसमें अजीब बातें थीं। लाइट के लिए उसे बहुत सख्त होना था, पर ग्रहों की चाल में कोई रुकावट नहीं डालनी थी। ये कैसे हो सकता है?
सही बात है, विरोधाभास है।
इसे खोजने की बहुत कोशिश हुई। सबसे फेमस था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट 1887 में।
हाँ, उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एक बहुत क्लेवर डिवाइस बनाया ये देखने के लिए कि क्या धरती के चलने से ईथर हवा का पता चलता है।
और नतीजा?
नतीजा कुछ नहीं, जीरो।
हाँ।
ईथर नहीं मिला। फिजिक्स में बड़ा संकट आ गया।
और इस संकट से निकाला आइंस्टाइन ने।
बिल्कुल, अगला पड़ाव है आइंस्टाइन का शून्य,
1905।
आइंस्टाइन ने कहा ईथर की कोई जरूरत नहीं है, लाइट की स्पीड सबके लिए कांस्टेंट है, शून्य फिर से खाली हो गया पर नए अंदाज में।
लेकिन वो यही लिए रुके है ना, जनरल रिलेटिविटी भी तो थी।
सही, 1915 जनरल रिलेटिविटी, इसने जीरो को और भी गहरा मतलब दिया। अब स्पेस सिर्फ एक मंच नहीं था।
क्या मतलब?
स्पेस और टाइम मिलकर बने स्पेस टाइम, चार डायमेंशन। और ये स्पेस टाइम फ्लैट नहीं, डायनामिक है। मैटर और एनर्जी इसे मोड़ सकते हैं।
अच्छा,
और यही मोड़ गुरुत्वाकर्षण है।
बिल्कुल, ग्रेविटी स्पेस टाइम का मुड़ना है। तो अब कुछ नहीं में भी ज्योमेट्री आ गई, गुण आ गए, वो मुड़ सकता है, उसमें ग्रेविटेशनल वेव्स चल सकती हैं।
वाह,
ये तो यूनानियों के खालीपन से बहुत अलग हो गया,
बहुत ज्यादा। लेकिन कहानी और भी अजीब होती है क्वांटम लेवल पर।
हाँ, अब आते हैं क्वांटम वैक्यूम पर।
यहाँ क्या होता है?
क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया तो वैसे ही अजीब है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत।
हाँ, पोजिशन और मोमेंटम एक साथ नहीं जान सकते। वही सिद्धांत एनर्जी और टाइम पर भी लागू होता है। मतलब आप ये कभी नहीं कह सकते कि किसी खाली जगह में ठीक जीरो एनर्जी है। हमेशा थोड़ी एनर्जी उधार ली जा सकती है।
उधार कहाँ से?
बस यूं ही, प्रकृति से, बशर्ते उसे फौरन वापस कर दिया जाए, बहुत कम समय के लिए।
एक मिनट, मतलब खाली जगह से एनर्जी और पार्टिकल बन जाते हैं? जादू जैसा लगता है।
लगता है, पर इसका सबूत है। कैसीमीर इफेक्ट।
कैसीमीर इफेक्ट, ये क्या है?
सोचिए, वैक्यूम में दो पतली मेटल प्लेट्स को बहुत बहुत पास रखें तो वो एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं।
क्यों?
क्योंकि प्लेट्स के बीच कुछ खास तरह के वर्चुअल कण ही आ जा सकते हैं, जबकि बाहर हर तरह के। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है और प्लेट्स पास आ जाती हैं।
अरे वाह, मतलब ये मापा जा सकता है?
हाँ, ये मापा गया है। ये साबित करता है कि क्वांटम वैक्यूम असली है, उसमें एनर्जी है, वो फोर्स लगा सकता है। तो जिसे हम खाली समझते हैं वो असल में वर्चुअल कणों का एक उबलता हुआ समंदर है।
कमाल है, तो वैक्यूम थाली में मलके एनर्जी और वर्चुअल कणों से भरा है। लेकिन किताब एक और चीज बताती है, शून्य का पदार्थ, हिग्स फील्ड।
सब्सटेंस ऑफ नथिंग, हिग्स फील्ड।
हाँ, ये एक और बड़े सवाल का जवाब है, पार्टिकल्स को मास यानी वजन कैसे मिलता है?
हाँ, ये सवाल तो है, फोटोन का वजन क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्यों है?
जवाब है हिग्स फील्ड। ये एक अदृश्य फील्ड है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह वैक्यूम में फैला है।
अच्छा, पूरे यूनिवर्स में?
हाँ, कहानी शुरू होती है बिग बैंग के ठीक बाद। यूनिवर्स गर्म था, सिमेट्री थी, शायद सारे पार्टिकल एक जैसे बिना वजन के थे। जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, यह हिग्स फील्ड एक तरह से जम गया। जैसे पानी भाप से बर्फ बनता है, सिमेट्री टूट जाती है।
ठीक है,
तो इस जमने से क्या हुआ?
इससे ये हुआ कि जो पार्टिकल इस जमे हुए हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें वजन महसूस होता है।
कैसे, कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे कोई सेलिब्रिटी भीड़ भरे कमरे से गुजरे तो उसे रुकावट महसूस होती है, धीरे चलना पड़ता है। ज्यादा इंटरैक्शन, ज्यादा वजन।
अच्छा, और जो इंटरैक्ट नहीं करते?
जैसे फोटोन, वो बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते तो उन्हें कोई वजन महसूस नहीं होता। वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, जैसे कोई अनजान आदमी भीड़ से आराम से निकल जाए।
ये तो अद्भुत है, मतलब वजन पार्टिकल के अंदर नहीं बल्कि फील्ड से टकराने की वजह से।
बिल्कुल, और 2012 में सर्न में हिग्स बोसोन की खोज ने इसे पक्का कर दिया। वो इसी फील्ड का एक कंपन है।
तो मतलब जो कुछ नहीं था वही वजन दे रहा है।
हाँ, सबसे हैरान करने वाली बात यही है, जिसे हम खालीपन समझ रहे थे वही हिग्स फील्ड के जरिए दुनिया के हर पदार्थ को उसका वजन दे रहा है। हमारा होना इसी खालीपन पर टिका है।
दिमाग घूम गया मेरा तो। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई?
नहीं, आखिरी हिस्सा हमें ब्रह्मांडीय शून्य, कॉस्मिक नथिंग तक ले जाता है। क्वांटम वैक्यूम और पूरे यूनिवर्स का कनेक्शन।
वो कैसे?
क्वांटम वैक्यूम में जो एनर्जी है, वैक्यूम एनर्जी, उसका ग्रेविटी पर असर होता है, लेकिन ये खींचती नहीं,
तो
ये धकेलती है, एंटी ग्रेविटी की तरह स्पेस को और फैलाती है।
क्या ये वही है जैसे डार्क एनर्जी कहते हैं?
बिल्कुल, आइंस्टीन ने शुरू में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डाला था, फिर उसे भूल कहा।
हाँ,
मगर 1998 में पता चला कि यूनिवर्स का फैलाव तेज हो रहा है, और इसका सबसे अच्छा कारण यही वैक्यूम एनर्जी यानी डार्क एनर्जी है।
कितना हिस्सा है ये यूनिवर्स का?
अनुमान है कि लगभग 70%।
70%?
हाँ, तो सोचिए, जिस कुछ नहीं की हम बात कर रहे हैं उसी की एनर्जी हमारे पूरे यूनिवर्स के भविष्य को तय कर रही है।
वाह, तो इस पूरी यात्रा को समेटें अगर, पहले बात तो ये कि शून्य के समझ लगातार बदली है, फिलॉसफी से लेकर क्वांटम फील्ड तक।
हाँ, ये विज्ञान की तरक्की दिखाता है।
दूसरी बात, आज का शून्य अस्थिर और क्रिएटिव है, ये खाली नहीं रह सकता, और इसी से गुण पैदा होते हैं जैसे वजन।
बिल्कुल,
कुछ नहीं ही कुछ का सोर्स बन गया।
तीसरा, ये वैज्ञानिक तरीके का अच्छा उदाहरण है, थियोरी बनी, टेस्ट हुई, बदली गई।
हाँ, ईथर वाली कहानी ये दिखाती है, सबूत के आधार पर आगे बढ़ना।
चौथा, छोटी दुनिया और बड़ी दुनिया का कनेक्शन, क्वांटम वैक्यूम और यूनिवर्स का फैलना।
ये कमाल का है, सबसे छोटे स्केल की फिजिक्स सबसे बड़े स्केल की कहानी लिख रही है।
और आखिर में वो शून्यता जो हमें बनाती है, हमारा वजूद इसी पर टिका है। हिग्स फील्ड ना होता
तो कुछ ना होता, ना एटम, ना केमिस्ट्री, ना जीवन, हम उसी खालीपन की उपज हैं।
किताब में कुछ यादगार बातें भी हैं।
हाँ, जैसे एक आइडिया ये है, विज्ञान का इतिहास शून्य को भरने का इतिहास है, जिसे कुछ नहीं माना वो सबसे जटिल कुछ निकला।
ये पूरी जर्नी बता देता है ना, खालीपन से जटिलता तक।
बिल्कुल, और एक और बात, आज का वैक्यूम खाली नहीं, ये वर्चुअल कणों का समंदर है और हिग्स फील्ड से भरा है जो हमें वजन देता है।
ये सीधे हमारे वजूद से जोड़ता है। हाँ, और तीसरा, शून्य की ऊर्जा सिर्फ थ्योरी नहीं, ये यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्ति है जो उसे तेजी से फैला रही है।
ये क्वांटम और कॉस्मोलॉजी को जोड़ता है, डार्क एनर्जी का महत्व।
अब सवाल है, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब?
हाँ, कोई सीधा ऐप तो शायद ना बने,
पर सोच पर गहरा असर पड़ता है, दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। यूनिवर्स सिर्फ चीजों से भरा खालीपन नहीं है, स्पेस और फील्ड्स ज्यादा फंडामेंटल हैं, हम सब उन्हीं की लहरें हैं।
हाँ, एक जुड़ाव महसूस होता है और बौद्धिक विनम्रता भी आती है।
सही कहा कि जिसे हम कुछ नहीं समझते थे उसमें इतनी गहराई है, आश्चर्य होता है, और ये वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा देता है। सवाल पूछो, सबूत ढूंढो,
और बुनियादी रिसर्च का महत्व भी दिखता है।
बिल्कुल, ये खोजें किसी ऐप के लिए नहीं हुई, बस जानने की इच्छा से हुई, पर स्टैंडर्ड मॉडल बना, WWW जैसी चीजें निकली।
सही बात है, तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? मेरे लिए तो ये कि सबसे सीधे सवाल अक्सर सबसे गहरी खोजों तक ले जाते हैं। कुछ नहीं क्या है, इसी से कितनी बड़ी कहानी निकली।
और मेरे लिए ये कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, डायनामिक और कनेक्टेड है। वैक्यूम खाली नहीं, एक जिंदा स्टेज है। हम सिर्फ यूनिवर्स में है नहीं, हम उसी के फील्ड से बने हैं, उसी शून्यता से हमें वजन मिला है।
एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यूनिवर्स की कुल एनर्जी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी मैटर और नेगेटिव एनर्जी ग्रेविटी बैलेंस हो सकती है। अगर ऐसा है तो क्या ये मुमकिन है कि पूरा यूनिवर्स ही एक क्वांटम फ्लक्चुएशन के तौर पर कुछ नहीं से पैदा हो गया हो?
ये सोचने वाली बात है, विज्ञान की नज़र से एक दिलचस्प संभावना हमारे वजूद की जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में, एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।